یار بے وفا، یہ ہے رسم دوستی؟
خداوند جناب اخنتون کو سلامت رکھے، میں جناب فرما رواہی کے فرامین کی بجاوری میں مشغول تھا۔
کون فرما روا، کیسے فرامین؟ یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے خدا نے آپ کو سونپی ہے، نہ کہ میں نے۔ فرما روا حقیقی تو وہ ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کو مردم مصر کی نجات کے لیے بھیجا ہے۔
اور ہمارے بنا روز کیسے ہیں؟
درود بر عزیز مصر جناب یوزارسیف۔
تعجب کی بات ہے، جناب یوزارسیف کو اپنے قدیمی دوست اب تک یاد ہیں۔
بھول جانا ہمارا شیوا نہیں، حاضر خدمت ہوں تاکہ کہیں بھلا نہ دیا جاؤں۔ میں یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ تمام امور کی گزارشات پیش کر سکوں۔
یقیناً گوداموں کی تعمیر اور گندم کی ذخیرہ سازی سے متعلق مسائل ہوں گے،
یا شاید ضرورت مندوں اور کاشتکاروں سے متعلق، اور یا پھر کاہنان معبد اور ان کی سرکشیوں سے متعلق۔
ایک ذمہ دار شخص کو ذمہ داریوں کے انجام دہی کے سوا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ بہت اہم مسائل ہیں۔
مصر کے ان مسائل کو بعد کے لیے اٹھا رکھیں، فی الحال ہم نے آپ کو کسی اور مقصد کے تحت یہاں بلایا ہے۔
لیکن مجھے تو گندم کی ذخیرہ سازی اور کاہنوں کی سازشوں سے متعلق بہت کچھ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ آپ نہ صرف مصر کو درپیش مسائل سے بخوبی نمٹ سکتے ہیں، بلکہ کاہنوں اور ان کی سازشوں سے بھی۔ ویسے بھی ان امور پر بعد میں بات کی جا سکتی ہے۔
آپ آمون اور اس کے معبد کے لیے منصوبے بنائیے، اور میں اور اخناتون آپ کے لیے۔
خود کو زیادہ زحمت میں مت ڈالیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اس مجردی اور تنہائی کی زندگی سے نجات دلائیں۔
اچھا، تو اصل بات یہ ہے، اب تک میں نے شادی کے حوالے سے سوچا نہیں۔
ہمارا مشورہ ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں۔
آسنات دختر آتون سس، یکتا پرستوں کے کاہن، معبد آتون کے کاہن آسم، ان کی بیٹی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے۔
تو ناچیز کو منفیس سے فوری طلب کرنے کی وجہ یہ تھی؟
آپ آج ہی معبد آتون کے کاہن آزم جناب آتون سس کے پاس جائیے اور ان کی بیٹی آسنات کو دیکھ لیجیے۔
اتنی جلدی بھی کیا ہے؟
کیوں نہ ہو، آسنات خوبرو بھی ہے اور یکتا پرست بھی۔
بالکل۔ آپ کو جلد از جلد شادی کرنا ہوگی، یہ ایک حکومتی فرمان ہے اور اس پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔
جی ضرور عالی جناب، ضرور۔
میں بوڑھی اور پشمردہ ہو گئی ہوں، ہے نا؟ میں نے چہرے اور پیشانی کی چھریاں دیکھی، بدصورت ہو گئی ہوں، ہے نا؟
لیکن آپ کے چہرے پر اب بھی بزرگی اور وجاہت کے آثار ہیں۔
تو کیا یوزارسیف میری طرف دیکھنا پسند کرے گا؟
آپ اب بھی مہربان اور چاہے جانے کے قابل ہیں بانو، پریشان مت ہوئیے۔
نہیں، یوزار سے خوبرو اور جوان ہے، وہ میری طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا۔ 15 سال مسلسل گرے اوزارے، ایک پتھر کو بھی موم کر دے۔ آپ نے تو اپنی پوری جوانی یوزارسیف پر فدا کر دی۔ میں نے اپنی جوانی یوزارسیف پر فدا کر دی، اے کاش میں جان فدا کر دیتی۔ میرا درد تو یہ ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کی جدائی میں क्या क्या सह रही हूँ। काश वो ये जान पाता, काश वो ये जान जाता, काश।
आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहती हैं? मुझसे क्या चाहती थी? उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई दिया? Thank you.
कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए। खुदा बंदा जे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे।
गुज़श्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ?
बाप की दूरी की वजह से। काश आज वह मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूँ और हर रोज मेरी रूह उनकी जानिब परवाज करती है।
मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते?
दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक है और यहाँ से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊँ और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूँ, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद ज़रूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में हैं। इन्हें जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है और मैं अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे खौफ है अगर मैं अपने बाबा और दीगर अहले खाना के फ़िक्र में रहा तो अपने फ़राइज़ के दुरुस्त बजावरी से गाफिल ना हो जाऊं और मुझ पर आयद ज़िम्मेदारी नामुकम्मल न रह जाए।
लेकिन कब तक? वो आपके वालिद और ख़ानदान वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए।
एक रोज़ आएगा जब वो यहाँ होंगे, लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूँ तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकसर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखसूस जबकि मैं जानता हूँ कि बनी इसराइल अभी तक तायब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदाबंदी इस हिजर फराक पर है मैं भी सब्र करूँगा।
ये बनी इसराइल कौन है?
इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है।
गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ?
वक्त आने पर जान जाएंगी।
मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते। मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ।
हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी।
बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर है महबद ने पेशन गोई की थी कि युजार सिर्फ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। युजार सिर्फ भूल जाए, मैंने बारहा ये बात आपसे कही लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी उस अर्शिफ की खातिर जाया कर दी। लेकिन क्या गासिर को भूल जाए, कुछ अपनी फिक्र करे। मेरी जुलेखा का ख्याल अब इस तरह ही कमी क्या
करे मामा,
वो मेरी मुन्नी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना दर्द दिल और अपना हाल किससे कहूँ?
सब्र कीजिए बहनो, आपको खुदाओं का वास्ता, सब्र कीजिए।
आप मेरी हमदर्द हो रास्ती, मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि दा तुम्हें मर्ग मेरी मुन्ने सो हमदर्द रहे।
आपको खुदाओं का वास्ता है बहनो, सब्र कीजिए।
युजार सीफ की जुदाई का दुख क्या कम था जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित तो खामोश होकर मेरे गमों अंधों के तमाशाई बने हुए हैं। मैं कैसे सब्र करूं?
जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो।
शहजादी की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जागकर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। आपको जुलेखा की कभी किसी भी बातें सुनने को नहीं मिलेगी।
दाढ़ी वाला भाई, दाढ़ी वाला,
ये किसका जनाजा है?
कारी मामा।
बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है।
बानो जुलेखा के दस्ते रास थी, क्या शानो शौकत हुआ करती थी उनकी।
यानी कसम में अब कोई भी नहीं रहा?
मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। अफसोस, क्या हम इसे ले जा नहीं सकते?
हाँ वाकई।
तुम लोग वापस जाओ, कस्म में कोई नहीं है।
क्या कर रहे हो? आहिस्ता।
ये पूतीपार का खसर है या रूहों का? यहां तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है।
चलो
फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना, ये सुनकर वो मजीद दुखी हो जाएंगी।
अगर बाद में पता चला तो कहीं वो हम पर शक ना कर बैठे।
क्या हुआ, यहां क्यों जमा है?
आपके लिए एक बुरी खबर है बानो।
यानी बुरा हादसा पेश आया है?
कसर में चोरी हो गई है।
चोरी? कोई नई बात नहीं। वैसे आप क्या चुरा ले गए?
जब हम वापस लौटे तो दो आदमी क्लस्टर से बाहर निकले और तेजी से भाग गए। हम उन्हें नहीं पहचान सके। गालिबन वो दोनों कोई आवारा चोर थे।
हम देर से पहुंचे बानो, इसलिए हम कुछ भी न कर सके।
हम में से किसी को तो यहां रहना चाहिए था।
हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है? मैं खुद को किसके लिए आरास्ता करूं? यूजार सीफ के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबद की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत हमारी कब तक? ये दर्द और गम कब तक? ये जासिफ से दूरी का गम, तारी मामा की मौत का गम, अपनी जवानी गवा देने का गम, या अपने मालूम मता बर्बाद हो जाने का गम। ए अमून, मेरी मदद फरमा।
हौसला कीजिए बानो।
नाम क्या है आपका? कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझसे क्या चाहते हैं?
क्या हुआ है नबी खुदा?
फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा है। वो मुझसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है, यानी मैं उसे कहाँ तलाश करूँ।
ख्वाबों के इसरार और रमूज नबी खुदा से पोशीदा नहीं है। अगर उस ज़हीफ़ा का चेहरा वाज़े तौर पे दिखाई नहीं दे रहा और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई मसलियत खुदावंदी होगी।
वो हाथ फैलाए मदद तलब कर रही थी।
अगर वो जरूरतमंद होती तो खुदावंद उसकी जानिब आपकी रहनुमाई जरूर कर देता।
आखिर ये जरूरतमंद औरत कौन है, कहाँ की रहने वाली है, किस शहर से ताल्लुक है, मैं उसे कहाँ तलाश करूँ। खुदावंद मबादा ये बेखबरी मेरी खता शुमार न की जाए और उसके बाबत मेरा मुआखजा न किया जाए।
मिस्र का इख्तदार संभालने के बाद से जनाबे युजार सीफ ने कभी पेट भर खाना तनावल नहीं किया।
उन्हें डर रहता है कि कहीं उनसे ज्यादा इस शहर में कोई बुका ना हो और इनकी शिकम सहरी बुके लोगों से इन्हें गाफिल ना कर दें।
बानो क्या हुआ आपको? बानो आली जनाब,
क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है?
आली जनाब, दाई को बुलवाई है। जरा तहम्मुल से काम लीजिए बानो, दाई अभी आती ही होगी।
मालिक दाई को लेने गया हुआ है, अब आसनात कैसी है?
दर्द की शिद्दत से तड़प रही है।
अभी दाई आ जाती है, आप जाएं और गर्म पानी का इंतजाम करें।
अजीज मिस्र जनाबी हजार सिफ पर
आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो।
फिक्र मत कीजिए आली जनाब, मुझ पर भरोसा रखिए। बानो असनात कहाँ है?
मेरे साथ आई है।
जी आली जनाब, आपको बेटी की आमद मुबारक हो, अपने माँ बाप की तरह बहुत खूबसूरत है।
हसनात की हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना?
दोनों सही सलामत है।
यकीनन इसके कदम नहायत मुबारक हैं, जनाबे युजार सिफ। जनाबे युजार सिफ, अक्सर मैं आपकी गर्दन में पड़ी इस मोहर की तरफ मुतवज्जा हुआ हूं और इस मोहर के लम्स के बाद आपके इत्मीनान का मुशाहिदा भी किया है। आखिर ये क्या है?
ये एक ऐसी मोहर है जिस पर लफ्ज मौत कुंदा है।
मौत?
वही जो तमाम अंबिया के अहदाफ को मुकम्मल करेंगे और तमाम फरिश्तादगान खुदा की आरजुओं को बरलाएंगे। काश मेरे पापा यहां होते और मेरी पहली औलाद को देखते।
बाबा, मैं अकेले ही गले की देखभाल कर लेता, आपने जहमत क्यों की? आप अपने हुजरे ही में आराम फरमाते। इस तवील रास्ते और धूप की तमाजत से आपको तकलीफ नहीं पहुंचती?
नहीं बेटा, फितरत की रानाइयों में जमाले खुदावंदी का नजारा करना मेरी रूह को तस्कीन बख्शता है।
बाबा, आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं।
हाँ मेरे बेटे, मालूम नहीं क्यों, मेरा ख्याल है शायद आज यूसुफ भी बहुत खुश है।
खुश आमदेद मेरी बेटी, आज से तुम्हारा नाम मिनसा है, यानी भला देने वाली। तुम्हारे आते ही तुम्हारे बाबा अपने तमाम गम भूल गए। मिनसा की आमद की खुशी में तमाम गुरबा और फुकराए मिनफीस में खाना तकसीम करवाएं।
मैं तिया मीनी हूं बानो।
जाने क्यों सही दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है।
ये कसरत गिरिया की वजह से है बानो। आप क्यों इतनी गिरिया जारी करती हैं? इतना रोने से आपकी आंखों की बिनाई भी मुतासिर होगी और चेहरे की शादाबी भी। कुछ अपनी सेहत का ख्याल कीजिए।
अब इन बातों का वक्त गुजर चुका, ये गिरिया ही मेरे जख्मों का मरहम है। अगर मैं ये गिरिया ना करूं दीवानी हो जाऊं।
क्या हुआ, आप कहां जा रही हैं बानो?
यहीं जरा लंगर कहां तक मेरे हमरा चलूंगी। जरा रोदमुन से पूछूं, शायद युजार सिफ की कोई खबर मिल जाए।
अब मैं आपको रोकने से तो रही बानो हजूर, और ना ही मैं आपको तन्हा छोड़ सकती हूँ, लिहाजा आपकी हमराई करने पर मजबूर हूँ।
दुरूद बर बानो ज़ुलेखा।
क्या तुम्हें रुदामून का कुछ पता है कि वो कहाँ मिलेगा?
शामाक, वो जनाबे होरम हूप के हमरा।
पता है कब तक वापस लौटेंगे?
नहीं मालूम नहीं बानो।
बानो उठिए, आपका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, तमाम लोग आपको पहचानते हैं।
तुम्हें हमारी बेइज्जती का खौफ है क्या? कोई इज्जत बाकी रह गई है? मेरी रुसवाई की दास्तान हर जगह आम हो चुकी है।
जुलेखा युजार शीफ के इश्क में बिल्कुल ही दीवानी हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें युजार शीफ की कोई खबर दें तो मेरा ख्याल है कि वो हमें एक बड़ा इनाम जरूर देंगी।
हाँ, हाँ, हाँ। फिर तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी ताकि युजार शीफ की आमद से हम दोनों बेखबर ना रह जाएं।
हाँ।
यकीन नहीं आता कि मिस्र के हसीन तरीन खातून पर ये वक्त भी आ सकता है।
युजार सीफ के इश्क ने उनकी ये हालत की है।
इन्हें मालूम है कि युजार सीफ ने शादी कर ली है?
मैं तो कहती हूँ कि कभी ना पता चले, वरना ये दुख तो उनकी जान ही ले लेगा।
शायद जानती हूँ, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता।
अगर जुलेखा को कोई फर्क ना पड़ता होता तो आज वो इस हालत तक ना पहुंचती।
अपनी अपनी जगह संभाल लो, आमादा हो जाओ।
कसर फरमारवा के पास सलाहियत सिपाही कैसे हैं?
सिपास गुजार हैं अली जनाब।
मेरे साथ आइए।
खैरियत अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ, अचानक इस वक्त कैसे तशरीफ लाए हैं?
अभी मालूम हो जाता है। बेनारस और कसर के खानसामा को मेरे पास भेजो।
बेनारूस और खानसामा को खबर करो।
इत्तेहाद,
तमाम मशाले रोशन कर दें।
सिपाही जल्दी करो, तमाम मशाले रोशन कर दो। अगर इजाजत मरम्मत फरमाए तो जनाबे फरमारवा को बेदार किया जाए।
रहने दें, इसकी जरूरत नहीं, अभी वो खुद ही बेदार होने वाले हैं।
उन्होंने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया है?
नहीं, बस फरमाया कि जल्दी करें।
दुरूद बर अजीज मिस्र जनाबे युजार सी,
आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने ताज़ीमन मत झुका करें। गालिबन जब तक कोड़े नहीं पड़ेंगे आपकी ये आदत जाएगी नहीं।
इताहत आली जनाब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी।
जनाबे फरमारवा के लिए तमाम मशरूबात का फौरी इंतजाम करें।
इतनी रात गए?
हाँ, अगले चंद ही लम्हों में जनाबे फरमारवा को भूख लगेगी और वो खाना तलब करेंगे।
लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, आप मुतमईन हैं कि जनाबे
फरमारवा? जब जनाब युजार सी फरमा रहे हैं कि फरमारवा को भूख लगेगी तो लगेगी।
जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रहा। मुशीरों और दीगर साकनी ने कसर को भी खबर कर दें, मैं चाहता हूं कि सब मौजूद हों।
मेरे पास खालिश शहद और खुरमे के शीरे से तैयार करदा शरबत मौजूद है।
रात का कुछ खाना बाकी है, अगर कुछ ताजा मेवे इजाफा कर दूं तो काफी होगा?
हाँ, काफी होगा। फरमारवा इतनी रात गए, इससे ज्यादा तनावुल भी नहीं फरमाएंगे। ये आवाज सुनी, फरमारवा ने बुलाया है।
ये कैसी बेमौका भूख है, पहले तो कभी ऐसी भूख नहीं लगी।
अचानक इतनी भूख कैसे लग गई? कहीं आपकी तबीयत तो नासाज नहीं हो गई? अगर आप कहें तो सेनोहा को बुलाऊं?
नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि ये दर्द और ये कमजोरी सिर्फ भूख के बायस है।
दरूद बर फरमारवा हकीम मिस्र और बानू नफरती तीर पर।
अजीज मिस्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कब तशरीफ लाए?
جناب فرما روا کو بھوک نہیں لگی؟
اتنی شدید کہ بس بھوک سے مرنے کی دیر ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟
آج رات مصر کو درپیش 7 سالہ قحط کی شروعات ہے، اور اس کی علامت جناب فرما روا کو یوں اچانک بے وقت بھوک لگنا ہے۔
آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ تو منفیس کے دورے پر گئے ہوئے تھے، آپ نے اتنا طویل راستہ اتنے جلدی کیسے طے کر لیا؟
یہ سب بعد میں عرض کروں گا۔ جناب فرما روا غذا تناول نہیں فرمائیں گے؟
گویا کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ نے تو ہر چیز کا پہلے ہی اہتمام کر لیا۔
مصر میں 7 سالہ قحط کی آج سے شروعات ہو گئی ہے، اور کل سے مردم مصر کو کفایت شعاری سے کام لینا ہوگا۔ میں اسی لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ خبر آپ کو دے سکوں۔
آپ جو بھی مناسب سمجھیے وہ کیجیے۔
ہم خداوند مطال سے ملتمس ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم قحط جیسے سنگین بحران پر بخوبی قابو پا سکیں۔
عجیب بات ہے، مجھے بھی بھوک محسوس ہو رہی ہے۔
تعجب ہے جنابی یوزار شیف، مجھے بھی شدید بھوک لگ رہی ہے۔
جس طرح ہم سب کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیا تمام اہل مصر کو بھی؟
کہاں شروع ہو گیا ہے، یہ بات لوگوں کو کیسے معلوم ہوگی؟
سب لوگوں کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ زمین کے بنجر ہو جانے اور باران رحمت کے نہ برسنے اور کاشتکاری کی ممانعت کے اعلان سے بالآخر سب سمجھ ہی جائیں گے۔ جو بھی گندم کی تحویل کے لیے آئیں، ان سے کہیے گا کہ فقط سالانہ ضرورت کی گندم اپنے پاس رکھیں، زخم پاشی کے لیے اب گندم کی ضرورت نہیں۔ تمام شہروں میں اعلان کروا دیا جائے کہ چونکہ اب 7 سال تک بارش نہیں برسے گی، لہٰذا مزید کاشتکاری نہ کریں اور نہ ہی تخم پاشی کی ضرورت ہے۔ مامورین سے کہیے کہ ہر شہر کے ثروت مند اور ضرورت مند افراد کی مکمل و دقیق فہرست تیار کریں، کیونکہ یہ دونوں طبقے مساوی مستحق نہیں۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قحط کے زمانے میں کس کو کتنی مقدار میں مفت گندم فراہم کی جائے اور کسے قیمت کے عوض گندم دی جائے، یعنی کسے ہمیں بخشنا ہے اور کسے ہمیں فروخت کرنا ہے۔